परमार्थिक गुण है तो वो सुंदरी है, और यदि गुण नहीं है उसके अंदर में, दया नहीं है, करुणा नहीं है, सेवा की भावना नहीं है, तो वो परम सुंदरी होती है, अभी राक्षसी है। और यदि काली कलूठी भी है, अशावक्र जैसा व्यक्ति, किंतु अशावक्र होने पर भी परम भरण्य है, उन्हीं को उन्होंने अष्ट जगहों से वक्र, उनको अष्टावक्र जी को अपने गुरु बना करके अपने सिंहासन पर विराजमान कर लिया। कौन? परम सुंदर, परम ऐश्वर्य वाले, परम ज्ञानी सुखदेव। इसलिए सौंदर्य क्या है? गुण है। गुण नहीं है तो यह सौंदर्य अभिशाप है, जगत में वो जगत को नाश करेगा। और यदि गुण है, यही यथार्थ। राधिका जी में क्या है? रुक्मिणी जी से कम होगी कि अधिक होगी? क्या होगी सौंदर्य में? कम नहीं है। सत्यभामा जी कम नहीं है, किंतु इनका कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, ये इनको बढ़ा देता है। जैसे देखो, सुलोचना और उर्मिला दो महिलाएं हैं, एक लक्ष्मण जी की पत्नी है और दूसरी मेघनाद। पर अभी बतलाया जो सुलोचना, सुलोचना और इनकी पत्नी का नाम उर्मिला। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा और उसका शीर अपने बाणों से भेद कर लंका के दरवाजे पर फेंक दिया, सुलोचना के घर के दरवाजे पर। उसने देखा, रही हमारे पति का शीर, बस एकदम विलाप करते ही उसको गोदी में ले लिया। रावण को और सब लोगों को पता लगा कि लक्ष्मण जी ने इसका वध कर दिया, उसका शीर यहां पर फेंक दिया। चारों तरफ में विरह उमड़ पड़ा। ये उस शीर को लेकर, इस शीर को लेकर रावण के पास में गई और विलाप करने लगी, आपके रहते हमारा ये, हमारे पति मारे गए, बहुत विलाप करने लगी। कहिए अब इसका संस्कार अंतिम कैसे होगा? आप हमारे पति, अरे ठहरो, हमारे पति का ये शरीर जो है, सिर तो आ गया, अब शरीर को लाने के लिए मैं सारे शरीर को लेकर के चिता बना करके और उसमें इनको लेकर के मैं सती हो जाऊं। रावण ने कहा जी ये काम तो हमसे नहीं होगा, आपसे ये नहीं होगा तो किसके द्वारा? तुम चली जाओ और राम से ये मांगना, राम तुमको जरूर दे दें, हमको विश्वास, मैं शत्रु पक्ष में नहीं जाती। बंदर लोग बड़े उद्यमी होते हैं, भालू लोग उद्यमी होते हैं, ये जानवर ही हैं, और हमारा अपमान कर दिया तो मैं पतिव्रता हूं, हमारे तरफ में कोई देखे तक मत नहीं तो हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं जैसे पवित्र हूं वैसे पवित्र होकर के पति के साथ में मरूं। तुम राम के पास में जाओ। कैसे जाऊं? राम परम उदार है, सत्यवादी है, सर्वगुणों को जीतने वाले हैं और सब समय निर्मल हृदय वाले हैं, तुम उनके यहां से जाने से मत डर। मैं बहुत पापी हूं किंतु वो बड़े धर्मात्मा है, इसलिए तुम जाओ, तुम्हारी जरूर आकांक्षा को पूर्ण कर दें। उसको लेकर के देखिए, और कोई उपाय ही नहीं है तो उस शीर को हाथ में लेकर और चली। और लोग डर के मारे रह गए, कोई नहीं गया, जैसे बंदर लोग उद्यम मारेंगे, कुछ करेंगे, अपमान करेंगे, और ये सीधा राम के पास में गई। राम लक्ष्मण दोनों वहां पर बैठे हैं और जामवंत, नंद, लीन, हनुमान सब लोग वहां पर बीच में जा करके और वहां पर रख करके उनको प्रणाम करके और रोने लग गई। कहा क्या चाहती है बोलो, तुम कौन है? कहा मैं उनकी पत्नी हूं मेघनाथ, मैं आपके पास में भिक्षा के लिए आई हूं, इनका यह शरीर हमको दे दिया जाए और मैं उसके साथ में लेकर के जल भरूं। राम ने कहा जी इसके लिए मुझे दुख है, मारा गया किंतु मारा किसने? बलवान दोनों थे, अद्भुत दोनों बलवान, और तुम दोनों एक तरफ में उर्मिला और तुम दोनों में कोई कम नहीं पतिव्रता हो, और तुम्हारे पतिव्रत धर्म के वजह से ये लोग इतने बड़े हुए हैं, इसलिए तुम्हारा पतिव्रत धर्म इनकी रक्षा कर रहा था, उर्मिला का पतिव्रत धर्म इनको रक्षा कर, किंतु एक गड़बड़ी बीच में हो गई, मेघनाद ने दुष्टों का साथ किया और उनका संग करके उसके लिए वो बेईमानी के लिए जिस स्त्री की को अपमान किया गया है उसके उसके लिए अपमानित में ये सहाय्य हुआ अधर्म का, इसलिए ये तुम्हारे लिए भी संपात बन गया, ये उनका मेघनाद का दोष। और यहाँ पर लक्ष्मण जी के लिए परम, उसकी पत्नी तो ऐसे है ही हैं तुम्हारे समान, किंतु लक्ष्मण जी धार्मिक हैं, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं, धर्मार्थ के लिए, धर्म के लिए कर रहे हैं। इन्होंने 12 वर्ष तक अन्न जल नहीं ग्रहण किया, 14 वर्ष, और इन्होंने 14 वर्ष तक किसी स्त्री को नहीं देखा। उन्होंने पूछा जी सीता जी को नहीं देखा? तो उनके केवल चरण को देखा और कोई अंग नहीं देखा, इसलिए इन्होंने अपने बल से मारा उनको, वो मारा गया, उसका अधर्म ही उसको मरवाया। लक्ष्मण जी ने भी नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा। अब तुम जाओ, लक्ष्मण जी के हाथ से मारा गया है, इसकी सुगति होगी, कोई चिंता मत करो, और उनके शरीर को दे दिया और वो दूसरे लोगों की सहायता से उसको ले जाकर के वहां पर सती हो गई। स्त्रियों में ऐसा गुण ही यदि रहे तो वो सौंदर्य है, अन्यथा गुण नहीं, गुण रहित कोई भी सौंदर्य, पुरुष में भी यही है, जितने असुर लोग हैं उनमें सुंदर नहीं थे, बहुत से सुंदर लोग हैं किंतु वह गुण नहीं रहने से असुर में गणित होते हैं, इसलिए हम लोगों को भी गुण ग्रहण करने, जितने प्रकार के गुण हैं उन सब गुणों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा गुण है? भगवत भक्ति का गुण सबसे श्रेष्ठ है, यदि भगवत भक्ति हुई तो सर्वई गुणास तत्र समासते सुरा हरा व भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन धावतो असत्। यदि भगवत भक्ति है तो सभी गुण है, उसमें सभी सौंदर्य है, उसमें सब कुछ है, और यदि भगवत भक्ति नहीं है तो वो असुर है, उसका चित्त इधर उधर भ्रमण करता है, उसको न तो शांति मिलती है न सुख ही मिलता है, उसका जीवन बेकार गया। आज यहीं तक संसार कल्प
निवासीनमोदरम राधा स्कंद निवेशित जलभुज भक्त्याभिनाय पराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै करालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्यजुहव पुत्रेति तन्मेतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं मां चरणं भजामि राधाम स्मरामि राधाम। बदामि राधम करुणा भरद्रम ततो मम नास्ति गति। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी पर। देवी शब्द का कृष्णमयी राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति और सम्मोहिनी और परा, इनमें से कहाँ तक हो गया?
सर्वकांति हो गया।
सर्वकांति, सर्वकांति, अच्छा। सर्व सौंदर्य कांति बैछय जहाँ थे, सर्व लक्ष्मी गणेश शोभा है जहाँ थे, समस्त सौंदर्य और उनकी कांति श्रीमती राधिका में विराजमान रहती है और समस्त लक्ष्मियों की शोभा राधा जी से ही है। अथवा कांति शब्द से एक तो हुआ कांति माने अंग की कांति शोभा और दूसरा हुआ कांति शब्द से कृष्ण की इच्छा। भालो करो दिखे देख, कांति शब्द से कृष्ण की समस्त इच्छाओं का नाम कांति है। कृष्ण की इच्छा क्या है? इच्छा क्या है? वे परम रसिक है, इसलिए रस का स्वादन करना ही उनकी इच्छा है। तो जो जो इच्छा करते हैं कृष्ण रसास्वादन के लिए, वो सब श्रीमती राधिका से अवस्थित। राधिका करण कृष्ण वांछित पूर्ण, उनकी जितनी भी वांछाएं होती हैं वो सब पूर्ण करती हैं श्रीमती राधिका। सर्वकांति शब्द यही अर्थ विवरण, इसलिए कृष्ण की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने के कारण उनका नाम है सर्वकांति। सम्मोहिनी, सम्मोहिनी माने मोहन करने वाली, भुवन मोहन की भी मनोमोहनी है। जगत मोहन कृष्ण, जगत को मुग्ध करने वाले, मोहित करने वाले, आकर्षण करने वाले कृष्ण हैं। कृष्ण शब्द में ही आकर्षण है, इसलिए समस्त जगत को वो आकर्षण करते हैं। तो कंस को आकर्षण क्यों नहीं किया? जरासंध दुर्योधन इत्यादि का आकर्षण क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? इसलिए उन पर मैल है माया का। इसलिए जैसे चुंबक लोहे को स्पर्श करता है किंतु उसके ऊपर में आच्छादन हो जाने से, मैल हो जाने से उसको आकर्षण नहीं करता, उसी तरह से जिनके ऊपर में जंग लगा हुआ है माया का, संसारिक आसक्ति जिन लोगों में, जैसे हम लोग भी हैं, कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है। मैल के अंदर से भी थोड़ी सी आकर्षण है ये वैष्णव की कथाओं को सुनने से। अभी विषयों में हम मिल जाएंगे तो बस आकर्षण दूर हो जाएगा, जो रहा है वो भी एक दिन भी नहीं लगेगा। इसलिए कृष्ण विश्व के मोहन करने वाले हैं और उनकी मोहिनी उनको भी मोहन करने वाली ये मोहिनी जी हैं। अतएव समस्त परा ठाकुरन, इसलिए सबके वो परा, सबसे श्रेष्ठ हैं इसलिए वो परा हैं। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, राधा जी पूर्ण शक्ति हैं और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान हैं। जैसे कृष्ण से समस्त अवतार, समस्त शक्ति, जीव और सारा जगत सब उन्हीं से प्रकाशित होता है, उसी तरह से राधा जी पूर्ण शक्ति हैं, उन्हीं से ही गोपियाँ महिषियाँ लक्ष्मी और अवतारों की लक्ष्मियाँ और जितनी विश्व में कुछ सृष्टि स्थिति और प्रलय की जो शक्ति है वो सब कुछ विश्व ब्रह्मांड इसी शक्ति से ही प्रकाशित होता है। कृष्ण भी किसी चीज को प्रकाशित करते हैं तो इसी शक्ति के द्वारा करते हैं। दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र परमा, दोनों वेद में कोई वस्तु नहीं है, भेद नहीं है, शास्त्र प्रमाण है इसके लिए। क्या शास्त्र प्रमाण है बोलो?
शक्ति शक्ति मतो रहेगा।
और बोलो और कोई और कुछ? शास्त्रों ने ऐसे उदाहरण भी दिए हैं, मृग मद तार गंध जैसे अच्छे अग्नि ज्वलात जैसे कभू नहीं भेद। मृग मद में कस्तूरी में और उसके गंध में जैसे भेद नहीं है, फिर भी भेद है। दो वस्तु जब नाम है तो जरूर भेद है, किंतु भेद होने पर भी अभेद ही है। यदि मृगमद नहीं रहा तो उसका गंध नहीं रहेगा, इसलिए अभेद हुआ। किंतु मृगमद माने कस्तूरी यहाँ रखने पर भी गंध चारों तरफ में फैल जाता है तो वो उसकी मृगमद नहीं फैलता, कस्तूरी नहीं फैलती, उसका गंध फैल जाता है, इसलिए दोनों में भेद। जैसे अग्नि ज्वाला के जैसे कभू नहीं भेद, अग्नि में और उसकी ज्वाला में, ज्वाला माने क्या, उसके ताप में कोई भी भेद नहीं, किंतु भेद है। कैसे? हम लोग के यहाँ चड़क पूजा होती है, बंगाल में भी होती है चड़क पूजा, होता है यहाँ से 10-12 हाथ लंबी वो खंडे जला करके, लकड़ी जला करके आग जलती है 10-12 हाथ। और गांव का साधारण एक पुरोहित हमने देखा है, वो होता है नीच जातियों में, दुसाद चमार इत्यादि में चड़क पूजा, और उसमें आग लगा करके और आगे आगे खड़ाव पहन करके उस आग पर चलता है, मंत्र पढ़ देता है, और उसके पीछे वो सब 5-7 आदमी 10 आदमी उसके पीछे, उसके पुरोहित का जो जाति वाले हैं वो उसके पीछे पीछे चलते हैं, कुछ भी नहीं होता। इस पर एक बार चले जाते हैं या फिर आग पर चढ़ करके तनिक भी कहीं फो फोले कुछ भी नहीं। हमने इसको स्वयं देखा है, हजारों लोग देखने के लिए आते हैं ये कैसे होता है। आग को बांध देते हैं और आग जलाती नहीं, इसलिए आग को बांध दिया है, आग को तो बांधा नहीं, बुझाया नहीं, आग जल रही है किंतु फिर भी उसमें ताप नहीं। ये बिजली है, बिजली को कैसा किया जाता है, बल्ब जलता है फ्लेम नहीं आती, ऊपर से बल्ब को भी पकड़ लेते हैं किंतु हाथ नहीं जलता। यदि बिजली का कनेक्शन किसी प्रकार से हो जाए तो झट मर जाएगा, किंतु बल्ब पकड़ने से नहीं होगा। खड़ा को काट के या इस पर चढ़ जाते हैं और चढ़ करके उसको ले लेते हैं, अर्थात उसमें सीमित की गई है, और ऐसे खुली हुई हो कोई पकड़े बस साथ ही साथ में मर जाएगा। इसलिए आग में और उसके ताप में कोई भी अंतर नहीं है, किंतु एक अंतर यह है कि आग यहाँ जल रही है ताप जाएगा वहां तक, बहुत दूर तक चाप चला जाएगा, इसलिए भेद है। इसलिए भेद और अभेद रहने के कारण ये अचिंत क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, इसको समझना बड़ा भारी कठिन है, इसलिए इसी को अचिंत भेदाभेद कहते हैं। राधा कृष्ण तैसे ऐसे एक ही स्वरूप लीला रस आस्वादित धरे दिन, वो पर्यटक महाराज इसकी व्याख्या कल कर रहा था ना, हाँ तो यही तो कर रहा, राधा और कृष्ण एक स्वरूप हैं, अलग नहीं किए जा सकते, तो भी लीला रस का आस्वादन करने के लिए ये दो रूप धारण कर, आग और उसकी दायिका शक्ति दो रूप धारण नहीं कर सकते, क्योंकि वो जड़ है, चेतन नहीं। किंतु ये चेतन होने के वजह से राधा कृष्ण एक होने पर भी ये दो होते हैं लीला रस का स्वादन करने के लिए। जितना साधन भजन जो कुछ है बस इसी सब के लिए उस चीज की अनुभूति हो, जितना साधन भजन है और जिनके अंदर में कुछ कुछ भाव है, ऐसे महापुरुषों का मिलना बड़ा भारी कठिन है। अंततः जहां पर कि ऐसे विषयों का श्रवण कीर्तन होता है, स्मरण दिलाते हैं, वो स्थान हम लोगों के लिए, वो व्यक्ति हमारे लिए सबसे सहायक है, वही गुरु है। इसलिए साधारण कष्ट से, कष्ट तो होगा, इतने आदमी हम लोग एक साथ रह, कुछ हो सकता है, किंतु इस बड़े लाभ की तरफ में दे करके सबको सैक्रिफाइस करना चाहिए और ऐसे संग में रह करके भजन करके इन चीजों को अपने हृदय में लाना चाहिए। इससे बढ़ करके और हमारा कोई स्वार्थ नहीं जगत में, ऐसा समझना चाहिए। इसके लिए बड़ा से बड़ा कुर्बानी कर, अपने सुखों को त्याग कर दे, सब कुछ कर दे। शिष्य क्या करता है गुरु के यहां, मैंने आपको आज बेच दिया। संन्यास में भी ऐसा ही होता है। अभी हम लोग लिखवा रहे थे संन्यास वाला विधि, उसमें गुरुदेव के पास में जांच करके कहता कि मैं संसार समुद्र में डूब रहा हूं, आप कृपा करके हमारे इस संसार से उद्धार कीजिए, मैंने आज आपको बेच दिया, अब अपने सुख और दुख की तरफ में कोई भी चिंता नहीं करके केवल मात्र आपकी सेवा में रहूंगा, आप हमारा उद्धार कीजिए। किस लिए आप, हम लोगों में लड़ाई झगड़ा किस लिए होता है, अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए। इसलिए तो झगड़ा, वाद विवाद ये सब किस लिए, हमारा एक विचार, इसका एक विचार, उनका एक विचार, उनका एक विचार, किस लिए, संसारिक वस्तुओं के लिए ही, संसारिक कामनाओं के लिए। इधर सुनो क्या कर रहा है, क्या बात, खूब जरूरी आ गई, बैकुंठ जा रहा है क्या, इसलिए इन सब चीजों की उपेक्षा कर। गुरुदेव से हमारा मन किस लिए मिलता है, किस लिए मिलता है, इस एक स्वार्थ के लिए हम अपने समस्त स्वार्थों का कुर्बान कर देते हैं। है? गुरुदेव कहें अभी क्यों सोता है, है? तो उठ करके बैठ जाएंगे, कोई उत्तर नहीं दे, और दूसरा कोई आकर के कहे तो क्या कहेंगे, अभी तारा से सिर तोड़ देंगे, थोड़ी सी बात के लिए। किंतु गुरु जी के लिए हम लोग सब कुर्बानी क्यों करते हैं, कि ऐसी कोई चीज वो देंगे, ऐसे मिलने की संभावना, हमारा जन्म जन्मांतर बन जाएगा ना। एक ने कहा जी ये गाय बड़ी लात मारती है, इसको दे दिया जाए, कहीं कसाई को दे दिया जाए, नहीं बेच दिया जाए। अरे लात मारती है किंतु दूध देती है, जो लात मारेगी देख लेंगे, कभी कभी पैर बांध करके रखेंगे और हम व्यवस्था कर लेंगे, किंतु गाय को मैं कहीं ना बेचूंगा ना कुछ करूंगा, गाय को रखूंगा, बीच में कभी लात ना, किंतु इतने हमारे घर भर का परिवरिश होता है, दूध मिलता है, पुष्टि होती है, इसलिए तो गुरु जी का आदेश हम सब पुलिस सहन करते हैं। वैष्णव का किस लिए, वो कभी कभी लात मारते हैं बात ठीक है, माने शासन करते हैं, किंतु इसलिए सहेंगे कि इसे हमारा इतना बड़ा भारी भला है जो विश्व में कभी भी कोई नहीं दे सकेगा, इसलिए इस चीज को समझना चाहिए खूब बारीकी से। जहां पर ऐसा स्वार्थ हो वहां पर सब कुछ सह लेना चाहिए। इसलिए गुरु के निकट में, वैष्णव लोगों के निकट में साधक, जो सच्चे साधक हैं, अनकंडीशनली सरेंडर करते हैं। कृष्ण के लिए भी ऐसा ही करने के लिए कृष्ण ने कहा कृष्ण ने क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका तात्पर्य क्या है समझो, ठीक से हम लोग समझने की चेष्टा नहीं कर। सर्वधर्मान, जिन धर्मों से तुमको सुख होता है, सुख की प्रतीति होती है कि नहीं, ये तो धर्म है ना। जिन चीजों से हमारी प्रीति होती है, जो कि हमारा पालन पोषण इत्यादि करते हैं, जो सब समय हमारी सेवा करते हैं, परित्यज्य छोड़ करके हमारे शरण में आओ, जगत के लिए तुमको गाली देंगे, कहीं ये धर्म से भ्रष्ट हो गया। पहले घर में रहने पर जैसे बहन पानी दे देती थी, माता पानी दे देती थी, और यदि विवाह हो गया तो पत्नी कितने मधुर भाव से, व्यवहार से खाना पीना सब देती थी। यदि सब छोड़ दिया तो ये तो नहीं होगा ना, ये कष्ट हुआ ना। इस कष्टों को सहो, किस लिए करो। मैं इन सब से छुटकारा सदा के लिए दे करके अपना प्रेम दे दूंगा, ये बड़ी भारी चीज है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं, जो कुछ सुखमय है, सुख है, धर्म है तुम्हारा और लोगों के प्रति धर्म है, शारीरिक और मानसिक, सबको छोड़ करके कष्ट सहो। धर्म छोड़ना मैंने क्या, कष्ट स्वीकार करो। मैं क्या करूंगा, यदि एकांतिक रूप में तुम हमारा आश्रय लेगा तो मैं तुम्हें सब दुखों से छुटकारा दूंगा। कृष्ण ने कहा जी भाई देखो, दुर्योधन आप भी आए हैं, हमारे सम्बन्धी लगते हैं ने? उनकी लड़की लक्ष्मणा की शादी इनके पुत्र सांब से हुई, और अर्जुन भी हमारा प्यारा ही है, हमने अपनी बहन उससे दी है, और हमारी बुआ जी का ये लड़का है, दोनों से हमारा निकटतम संबंध। भाई मैं लड़ूंगा कुछ नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, तो जो कुछ कर लो, लड़ो मरो करो, निहत्था रहूंगा, हमको जो चाहे ले जाओ। दुर्योधन ने देखा क्या बेकार, ऐसे एक आलसी आदमी को कुछ भी नहीं करेगा, हम ले करके क्या करें। और अर्जुन का हृदय धक धक कराया, कहीं दुर्योधन मांग न ले, और कहा जैसे आप ही समझी हमारे पास में पहले आई, इसलिए आप ही पहले मांग लीजिए, जो खुद दोनों में हमको लेंगे या नहीं आप कह दीजिए, इसके बाद में जो बाकी रह जाएगा अर्जुन को देंगे। तो उसने विचार करके देखा कि ये तो लड़े फड़ेंगे नहीं, इसलिए इनको छोड़ करके इनकी नारायणी चतुरांगणी सेना हम ले। इन्होंने कष्ट सहा, लड़ाई में हारने का झोंक भी लिया, कृष्ण लड़ेंगे तो क्या होगा, हारेंगे तो यही तो, हार जाना मंजूर है किंतु कृष्ण को छोड़ना। द्रौपदी की लज्जा, जब जा रहे थे उसने प्रतिज्ञा किया जब केश नहीं बांधूंगी, भले ही वो केश ना बांधे, हमको राज्य से दूर रहना पड़े, सब कुछ मुझको मंजूर है किंतु कृष्ण को छोड़ना मंजूर। दुर्योधन ने छोड़ दिया। हुआ क्या, जहां पर कृष्ण है, जहां पर धर्म है, वहीं पर विजय सुनिश्चित है, बस इन लोगों की विजय हुई, ऐसे ही समझो। इसलिए कष्टों को सहने के लिए हम घर छोड़ करके आए हैं, इसलिए सब कष्ट को सह करके कृष्ण के लिए, गुरु के लिए, वैष्णव के लिए, ऐसी परिस्थिति के लिए, और किसी की तरफ में मत देखो इधर उधर, यदि कल्याण चाहते हो। आया समझ में, इसलिए इस विचार को सब समय हृदय में लगी रहे, और सब चीज बेकार की है, बस टीके रहे। एक बतलाया ना, ओ क्या है वो, जीवित रहना ही उत्तराधिकार है, मुक्ति सदा। यदि कोई बच रहता है, पिता का पुत्र बच रहता है मैंने मर नहीं गया, तो पिता की संपत्ति का वो मालिक हो जाएगा। यदि हमने इसको छोड़ नहीं दिया तो हम भी भक्ति के अधिकारी। मुक्ति उसके पद में, किसके
मुक्ति के पद में
जरूर मिलेगी। और जो बीच में तंग आकर के संसारिक सुखों के लिए तुच्छ कंडुवन के लिए खुजलू के लिए छोड़ दिया तो सभी हमारा चला गया। इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। प्रेम भक्ति सिखाई थे आपनी अवत श्री चैतन्य महाप्रभु जी। कृष्ण भी स्वयं जितने भगवान के अवतार हैं वो आते हैं किस लिए, युग धर्म की रक्षा करने के लिए, साधु को शिष्टों को सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार का पृथ्वी का भार उतारने के लिए। किंतु कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु आते हैं प्रेम भक्ति सिखाने के लिए, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण और गोपियों के बीच में, कृष्ण और मैया के बीच में, कृष्ण और सखाओं के बीच में क्या प्रेम था, उस चीज को शिक्षा देने के लिए जगत में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। राधा कृष्ण भाव कांति, राधा भाव कांति दुई अंगीकार कर, राधा जी के भाव और उनकी कांति को, कांति को किस लिए, अपनी कांति को कृष्ण को छिपाने के लिए, जब मैं कृष्ण हूं लोग जान न जाए, इसलिए राधा जी की कांति और भाव का आस्वादन करने के लिए, कृष्ण को आस्वादन करने के लिए तीन प्रकार की माधुरियों को भाव लिया। भाव लेना माने क्या, कभी अभिनय कोई हो रहा है, नाटक हो रहा है, अभिनय हो रहा हो, मुझको रोहिताश्व का या प्रहलाद का पार्ट प्ले करना है, और किसी को नृसिंह जी का पार्ट प्ले करना है, और किसी को हिरण्यकश्यपु पार्ट प्ले करना है ना? तो जो प्रहलाद बनना बनेगा, पार्ट प्ले करेगा, वो कैसा होना चाहिए, बालक के समान छोटा सुंदर सुकांत होना चाहिए ना? यदि एक बड़े पहलवान लंबे चौड़े को प्रहलाद बना दिया और एक छोटे से बालक को हिरण्यकश्यपु बना दिया तो पार्ट अच्छा होगा, तो इसलिए अनुकूल होना चाहिए, रूप भी ऊपर का जो रूप है वो भी और भाव भी दोनों, उस समय में एकदम प्रहलाद बन जाए, एकदम बन जाए, भाव ऐसा आ जाए, ऐसी परिस्थिति तैयार कर लेनी चाहिए, ऐसी बोली, ऐसा भाव, स्वभाव, रूप, रंग और वातावरण ऐसा हो जाए लोग समझें जैसे वही चीज हो रही है। मैं कभी कभी आप लोगों को बतलाता हूं, बब्रू वाहन वाला कृष्ण और अर्जुन उसके पास में गए परीक्षा करने के लिए, कहा जैसे एक बाघ है हमारा, वो भूखा है, पापन कुत्ता ये मांस खाएगा। उन्होंने कहा जो ठीक है मैं अभी मांस मंगा देता हूं, किस चीज का मांस चाहिए, कि ये आपका मांस चाहिए, और मांस ऐसे हो जो आपका बेटा और आपकी स्त्री दोनों मिलकर के चीरे, और दाहिना भाग को हमारा कुत्ता खाएगा, बाएं भाग को नहीं खाएगा। उन्होंने कहा जे ओमस्तु ऐसा ही होगा, बस अपनी स्त्री को और बेटे को बुलाया, और जो करात होता है ना आरा बड़ा वाला, आजकल होता, आजकल तो मशीन बन गया, पहले होता था आरा, बड़े बड़े दांत होते, और उसको ऐसे खींच करके काटते थे इधर से नीचे की तरफ में, और ले जाने के समय में उसको ऊपर से ऐसा छोड़ते, उसमें भी कायदा है। बस आरा भी लाया गया, अभिनय हो रहा है मंच पर, और कम से कम तो 10,000 आदमी बैठे हैं। सचमुच में जब आरा लगाया और दोनों माँ और बेटा जब चीरने के लिए लगे तो सचमुच में चीते चीते धस गया, और जितना धस रहा है दोनों तरफ में रक्त से एकदम इधर उधर भर गया, सब लोग रोने लगे, एक भी व्यक्ति नहीं था जो न रोए, और एक बूढ़ा उठ करके एक जूता उसको मारा गया। अरे बदमाश ने कहा नाटक कर रहा है ना, काट रहा है, बस उस जूते को सिर पर लेकर के नाचने लगा, बोला हमारा अभिनय सफल हो गया, ऐसे ढंग से किया तब तो अभिनय सफल होगा। तो कृष्ण है, अभिनय करेंगे कैसा, राधिका जी का तो राधिका जी का रूप और भाव होना चाहिए ना। इसलिए ठीक वैसे ही कृष्ण कोई समझे नहीं जो कृष्ण है, इसलिए काले रंग को छिपा करके राधा जी का गौर रंग ले लिया, अंग कांति। और गौर अंग कांति होने पर भी भाव नहीं होगा जिस भाव से आस्वादन किया जाए, हम में भाव नहीं है इसलिए कृष्ण तो है कहां ठीक से अर्चन होता है। यदि इच्छा नहीं हुई नहीं अर्चन करने का, आज हमारी तबीयत खराब है, सिर में दर्द हो रहा है, दूसरा कोई को लगा दीजिए। यदि भाव रहेगा जो कृष्ण हमारे सखा है, हमारे मित्र हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारी प्रियतम हैं, ऐसा होगा मर जाएंगे तो मर जाएंगे, ऐसा भाव ही नहीं आएगा जितना जो कुछ हो। इसलिए हम में वो मूड नहीं है, बिना मूड के कृष्ण की सेवा नहीं होती। ये मूड को लाने के लिए, भक्ति के भाव को लाने के लिए ये जितने साधन हैं, और ये साधन सुखकर है ना कष्टकर होना चाहिए। सुखकर होगा, सुखकर पीछे प्रतीत होगा, मैया को, बाप को, स्त्री को, धन को, संपत्ति को, मान को, सम्मान को, कष्ट के और जितने हैं सुख, ये सब नौकरी चाकरी व्यवसाय वाणिज्य प्रतिष्ठा सबको छोड़ना होगा। ये सुखकर है, आते क्यों नहीं लोग? इसलिए सुखकर नहीं है, कष्टकर है, किंतु होने के बाद में बड़ा सुखकर लगने लगता है पीछे। जितना जितना भक्ति आती जाती है जितनी, उतनी यह होता जाता है। इसलिए कृष्ण ने अपने को छिपाने के लिए ऊपर से राधिका जी का अंग कांति और उनके भाव, भाव माने क्या, राधा जी में श्रद्धा से लेकर के महाभाव तक जितने भाव हैं उन भावों को लिया। एक महाभाव को लेने से सभी भाव उसमें आ गए। 500 रुपए के नोट में कितने रुपए हैं देखा जाता है, एक ही तो देखा जाता है एक, किंतु 500 रुपए उसको थोड़ाओ तो 500 नोट उसमें से 500 रुपए मिल जाए, 500 रुपए की कोई नहीं, उसका फ्रैक्शन भी उसके अंदर में है। इसलिए महाभाव राधिका जी में रहने से सब जितने भाव हैं, महाभाव किसको कहते हैं, कृष्ण को सुखी करने की इच्छा। ये चीजें जब आ जाती हैं तब वो कृष्ण ही अपने को आस्वादन करते हैं, और लीला रस आस्वादन यही उनका विलास है। दो ही अंगीकार करी श्री कृष्ण चैतन्य रूप है कैला अवतार, उन्होंने चैतन्य रूप में अपना अपने को आत्म प्रकाश किया। एत पंचम श्लोक है अर्थ पर जाए, यही श्लोक का यथार्थ तात्पर्य है। अब यह हुआ पंचम श्लोक का, पंचम श्लोक क्या है, अनर्पित चरण यही है, आखिर राधा या प्रणय महिमा, अच्छा यही तो पंचम श्लोकेर अर्थ प्रकार। षष्ठ श्लोकेर अर्थ करी के प्रकाश, प्रथमे कहे इस श्लोकेर अभाव। अब छठे श्लोक का अब ये वर्णन कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं अवतरी प्रभु प्रचारिण संकीर्तन। प्रभु ने सबसे पहले अवतरित हो करके क्या किया, सबसे पहले जिस दिन अवतीर्ण हुए उसी दिन कीर्तन का प्रचार किया, सब लोग कीर्तन कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण हुआ शाम का समय और जहाँ चंद्रहण रहने लगा, पहले हरि बोल करके गंगा लोग स्नान करते, यमुना में स्नान करते थे, समुद्र में स्नान करते। धीरे धीरे समय ने पलटा खाया, यमुना का पानी भी गंदा दिखा, अब कोई नहीं जाता है भी, तो अब एक बेपढ़ा लिखा व्यक्ति अपने माता पिता को देख करके उसमें भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, स्कूल कॉलेज में पढ़ करके विशेष करके अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ करके, अब वो ऐसी श्रद्धा बिगड़ गई, अब ग्रहण ट्रहण कुछ नहीं मानता। पढ़ने का तात्पर्य क्या, अब जानना ना, तो ऐसे चीज को जान लिया पढ़ ली करके, विरोधी चीजों को जिसको जानना था वो उसके प्रति अवज्ञा। अब ग्रहण के दिन में कोई भी स्नान नहीं करता, ग्रहण के समय में लोग जगते नहीं, कोई धर्म कर्म नहीं करते, मानते नहीं, कहते ये तो चंद्र और सूर्य पर छाया किसी की केतु और राहु की पड़ती है इसलिए ऐसा होता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। किंतु उस छाया में क्या चीज है, विषाक्तता है या क्या चीज है, कैसे उसको दूर किया जा सकता है, उस पर विचार नहीं। हमारे पहले ऋषियों ने इस पर विचार किया, इसलिए नहीं समझते। इसलिए महाप्रभु जी सबसे पहले ग्रहण के दिन में हरि नाम संकीर्तन के मध्यम में वो आविर्भूत हुए, और बच्चे रहते समय में बड़े रोते थे हाथ पैर पकड़कर, और यदि कोई हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताली बजाया, हरि बोल कृष्णा कृष्णा राधे राधे, बस बस हाथ ऐसा कर करके हंसने लगते। इसलिए जब ही बंद हुआ तभी रोने लगे, इधर दूसरा कोई आए तीसरा आए उसको हरि बोल बोलना ही पड़ेगा। इसलिए घर के सब लोगों को अभ्यास, समाज के पास पड़ोस सब लोगों हरि कीर्तन में लगा दिया, और इसके बाद में जब बड़े हुए विशेष करके सब जब गया गए वहाँ से लौट करके आए तो वहाँ पर जहाँ पर ये पढ़ाते थे उसकी पुस्तकों में डोर लगा दिया, भाई अब मुझसे कृष्ण नहीं, मुझसे ये अपढ़ाया नहीं जाता। यदि जोर करके उनके गुरु जी से कहवा करके कुछ पढ़ाने की व्यवस्था की गई तो सूत्र टीका वृत्ति और श्लोक सबकी व्याख्या कर दी कृष्ण पर, जितने श्लोक हैं जितने उसके शब्द हैं सबका अर्थ लगाया क्या कृष्ण, सूत्र वृत्ति टीका जो कुछ जैसे शब्द रूप, शब्द रूप क्या है कृष्ण ही रूप है, और विभक्तियां क्या हैं ये प्रकृतियां हैं, जैसे जैसे प्रकृति वैसे शब्द रूप माने कृष्ण का रूप। यदि मायावादी प्रकृति है तो क्या होगा कृष्ण निर्विशेष है, यदि प्रकृति कैसी है ये शांत रस की प्रकृति है तो वो निर्विशेष रूप, यदि दास्य भाव है तो नारायण के रूप में, यदि सख भाव है तो कृष्ण के रूप में, और वात्सल्य रस है तो नंद नंदन के रूप में, और मधुर प्रकृति है तो प्रियतम के रूप में कृष्ण दिखे। ये सब इस प्रकार से आरंभ किया, जो कुछ भी है सब की का अर्थ बस कृष्ण करने लग गए। इसके बाद में गया गए वहां से लौट करके और कृष्ण भाव में विभावित हो गए और निरंतर कृष्ण नाम कीर्तन होने लग गया। जितने पढ़ुआ थे छात्र थे सबको ले लिया और अवशिष्ट व्यक्ति थे उनको लेकर के और कीर्तन करने लगे, कराने लगे, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास अमर आज्ञा करो हो प्रकाश, कृष्ण भई ना बोली बे आन, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा इत्यादि, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण कर कृष्ण सब समय कृष्ण 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 ये भिक्षा मांग रहे हैं। और इसके बाद में खुद नगर संकीर्तन करते हुए और चारों तरफ में प्रचार, और इसके बाद में जो रहा सहा पुरी में पहुंच करके रथ यात्रा के समय में संपूर्ण से सर्वांग रूप से उसको पूर्ण कर दिया, जहां जहां गए वहां पर कृष्ण नाम का प्रचार किया। यह बाह्य हेतु, किंतु नो जो प्रचार किया यह बाह्य हेतु है, चेतन महापुरुष प्रीच एवरीवेयर कृष्ण नाम बट इज वाज आउटर रीजन नॉट इंटीरियर रीजन। नाउ सम दोज हु डोंट नो एनीथिंग एबीसीडी ऑफ भक्ति दे टेल दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड फर्स्ट थिंग and all these things to do bhakti is secondary, so we should preach, by preaching we will have krishna prem, what is there everything will be by this preaching, but mahaprabhu told that krishna das kaviraj goswami ye batlaya अंतरंग बहिरंग संगे करे नाम संकीर्तन, अंतरंग संगे करे रसास्वादन। He was doing kirtan with bahiranga, bahiranga you know, and with antaranga he was doing Krishna rasaswadan with Raya Ramananda and Sarupa. Avatare are ek ache mukhya bij. Avatar ka ek aur bhi mukhya bij. Bij mane kya? Bij? बीज होता है कारण, किसी चीज का कारण ही बीज होता है। तो मुख्य बीज क्या है? मुख्य कारण एक और है, अब उसी को बतला। रसिक शेखर कृष्ण से ही निज कार्य, रसिक शेखर कृष्ण यही कार्य निज, रसिक शेखर जो कृष्ण है उनका अपना काम है, क्या होगा? रस, रसिक है ना, रसिक माने रसास्वादन करते, ये अपना उनका कार्य। कृष्ण इज रसिक शेखर, ही इज द मोस्ट सुपीरियर रसिक, सो टू टेस्ट रस इज द मोस्ट सुपीरियर थिंग एंड दैट इज द कृष्ण ओन ओन व्हाट ओन मोटिव। अति गुण हेतु यही त्रिविध प्रकार, अत्यंत गुण होने के कारण ये तीन प्रकार के हैं, क्या? अपना कार्य रस आस्वादन करना। रस आस्वादन तीन प्रकार से होगा, कैसे होगा? दामोदर स्वरूप हैते जहां रो प्रचार, दामोदर स्वरूप जिन्हें इसको प्रचार किया। स्वरूप गोसाई प्रभु अति अंतरंग,